नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमा नेगी यानी कि आपकी दोस्त और होस्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम नई दिशा में। और ये जगत,
हेलो प्रेमा,
आ गए जनाब। और ये आज क्या हाल बना रखा है, तबीयत तो ठीक है?
अरे कुछ नहीं प्रेमा, वो कुछ दिनों से काफी बुखार चल रहा था ना, लेकिन अब ठीक है।
बुखार?
अरे घबराने की कोई बात नहीं है प्रेमा, मैं सारी दवाइयाँ ले चुका हूँ। और हाँ, मैंने HIV के बारे में भी सोचा।
हाँ, मैं वही पूछने वाली थी।
मैंने पिछले कुछ महीनों में ऐसा कोई भी जोखिमपूर्ण व्यवहार नहीं किया जिससे मुझे HIV का कोई खतरा हो। नो सेक्स, नो नीडल शेयरिंग। और हाँ, जब भी डॉक्टर के पास गया, नई सिरिंज और सुई का ध्यान रखा मैंने, और खून चढ़वाने की कोई घटना भी नहीं हुई। तो मेरा ये बुखार केवल बुखार है।
हमारे श्रोता भी सोच रहे होंगे जगत कि ये क्या चर्चा है, तो इसके बारे में दोस्तों हम आपको हमारे अगले सेगमेंट जानो अनजाने में बताते हैं।
दोस्तों, कुछ लोगों में HIV से संक्रमित होते ही कुछ लक्षण सामने आते हैं और फिर अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। शुरुआती लक्षण इतने ज्यादा मामूली होते हैं कि किसी भी आम बुखार या वायरल की तरह, कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ये सब उनके HIV पॉजिटिव होने की वजह से हो रहा है।
मगर ये शुरुआती लक्षण सभी में नहीं होते, सिर्फ कुछ लोगों में ही उभर कर आते हैं। ज्यादातर HIV के लक्षण कई सालों बाद ही सामने आते हैं दोस्तों, जब HIV शरीर में काफी सक्रिय हो चुका होता है।
मगर कुछ लोगों को संक्रमण के कुछ दिनों या हफ्तों बाद बुखार, सिर दर्द, थकान, शरीर पर खुजली होने जैसी परेशानी होने लगती है।
तो जरूरी है ऐसी परिस्थिति में सोचना कि आप किसी जोखिमपूर्ण परिस्थिति के बाद तो इन लक्षणों को नहीं देख रहे हैं, और अगर हाँ तो तुरंत अपनी HIV जांच करवा लें।
और ये तो आप सभी को याद होगा ही दोस्तों कि HIV संक्रमण केवल चार तरह से हो सकता है। असुरक्षित यानी बिना कॉन्डोम के यौन संबंध से, असुरक्षित या बिना जांचे हुए खून से, पहले इस्तेमाल की गई सुइयों या सेरिन से, और HIV ग्रसित माँ से उसके होने वाले बच्चे को।
और वैसे भी दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूंगी कि आपको अपना HIV टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, और इस सूरत में तो जरूर ही।
अगर आपके शरीर का वजन तेजी से घट रहा है,
सूखी खांसी है जो कि ठीक नहीं हो रही है,
जल्दी जल्दी बुखार आता है,
गले में सूजन है,
या फिर शरीर पर लाल, गुलाबी या भूरे धब्बे हैं, तो ऐसे में आपको जरा भी समय गंवाने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत जाकर अपना HIV टेस्ट करवाना चाहिए।
तो दोस्तों, भलाई इसी में है कि HIV के मामले में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। तो जगत, अब बात करते हैं भेजा फ्राई की।
बिल्कुल। और दोस्तों, एपिसोड 31 में हमारा सवाल था, शरीर में टी सेल से किस चीज का पता लगाया जाता है, और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी शरीर में CD4 की संख्या, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है।
और दोस्तों, एपिसोड 28 का सही जवाब देकर आज के भाग्यशाली विजेता बने हैं करुणेश वर्मा जी मुंबई से।
जो वक्त आए, जाने क्या दिखाए।
आपको हमारी तरफ से ये भेजा फ्राई कैप बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों, अब आज का सवाल।
और आज का सवाल है, इनमें से कौन सा वाक्य गलत है? एक बार अपना सवाल फिर से सुनिए, इनमें से कौन सा वाक्य गलत है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए, किसी भी कर्मचारी को उसके HIV स्टेटस के आधार पर नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। बी, ये कानूनन बाध्य है कि हर HIV पॉजिटिव व्यक्ति अपने HIV स्टेटस का खुलासा करे। सी, अभी तक विश्व में HIV का कोई इलाज नहीं है। और डी, ऐसा हो सकता है कि एक HIV पॉजिटिव माँ का होने वाला बच्चा HIV से संक्रमित न हो। अपने ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए, ए, किसी भी कर्मचारी को उसके HIV स्टेटस के आधार पर नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। बी, ये कानूनन बाध्य है कि हर HIV पॉजिटिव व्यक्ति अपने HIV स्टेटस का खुलासा करे। सी, अभी तक विश्व में HIV का कोई इलाज नहीं है। और डी, ऐसा हो सकता है कि एक HIV पॉजिटिव माँ का होने वाला बच्चा HIV से संक्रमित न हो।
तो दोस्तों, ये है आज का सवाल। और इस सवाल का जवाब देने के लिए फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND32 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ABC या D, और लिखकर भेज दीजिए 9717678223 पर।
और दोस्तों, अब वक्त है हमारे आज के मेहमान को बुलाने का।
जी हाँ, अब वक्त है आमने सामने का।
दोस्तों, आमने सामने में हमारे आज के मेहमान हैं कमल खुराना जी, और इनसे आज हम बात करने वाले हैं किशोरियों और उनसे जुड़े HIV के खतरों के बारे में। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए।
जी, मैं डॉक्टर कमल खुराना, मैं एक मैरिज एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ। मैं लोगों को शादी से संबंधित या रिलेशनशिप से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं उनमें सॉल्व करने में मैं उनकी मदद करता हूँ, और ये काम मैं पिछले 6 सालों से कर रहा हूँ।
खुराना जी, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि एक लड़की की शादी किस उम्र में होनी चाहिए?
देखिए, जब हम शादी की उम्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस उम्र को डिफाइन तो नहीं कर सकते, बट हाँ, हम इस तरह से कह सकते हैं कि शादी की सही उम्र वो है जिसके अंदर लड़की या लड़का एक नए रिश्ते को इमोशनली डील करने में तैयार हैं, जब वो फिजिकल तौर पे तैयार हैं, जब वो फाइनेंशियल तौर पे तैयार हैं। तो जब वो तैयार हैं उन्हें लगता है तो वो एज सही एज है, बजाय कि अगर हम कहें कि डिफाइंड एज है। इवन लॉ के अंदर भी हमारी सरकार ने 18 साल की जो आयु है उसको निर्धारित किया है लड़की के लिए, और 18 साल की आयु भी इसलिए डिसाइड की गई क्योंकि पहले सिस्टम जो था वो बाल विवाह का था, तो 12 साल की उम्र तक लड़की की शादी कर दी जाती थी। अब जो है सरकार ने बहुत खींचतान करके इसको 18 तक लाए हैं, बट अगर मेरे दिल से पूछें तो 18 भी वो सही उम्र नहीं है। उसका कारण ये है कि 18 साल में आप अपने अस्तित्व को उस तरह से नहीं बना सकते हैं, 18 साल की उम्र में आप इमोशंस को उतने अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, 18 साल में आप एक शादी में जो शारीरिक संबंध है उनके लिए भी नहीं, कहीं ना कहीं तैयार नहीं होते हैं आप। तो सही उम्र वो है जहाँ पे आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हों।
अच्छा, लड़की की जल्दी शादी आमतौर पर क्यों कर दी जाती है?
लड़की की शादी जल्दी इसलिए कर दी जाती है क्योंकि जो उसके माँ बाप हैं वो इसे एक काम के तौर पे लेते हैं, उनके लिए ज़िंदगी का एक मकसद बन के रह जाता है। जिस दिन से लड़की पैदा होती है उन्हें लगता है कि इसकी शादी करना हमारी जिम्मेवारी है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं वो ये इस बात को भूल जाते हैं कि वो आगे उस रिश्ते को अच्छे से निभा पाएगी कि नहीं, क्या वो उस चीज़ के लिए तैयार है अभी कि नहीं, इन सब चीज़ों को वो नहीं देखते हैं।
खुराना जी, इस तरह जल्दी शादी करने के क्या क्या नुकसान है?
जल्दी शादी करने से सबसे पहले तो लड़की को ये एक दिक्कत आती है क्योंकि वो अलग जिंदगी से एक दूसरी नई जिंदगी में प्रवेश जब करती है तो जो ये बदलाव आता है उसको एकदम से वो नहीं झेल पाती है। होता क्या है कि एकदम सब कुछ बदल जाता है, वो एक नए घर में आती है, सब नए लोग आसपास में, और सब उससे कुछ ना कुछ उपेक्षा रखते हैं, और इस बात की वजह से कहीं ना कहीं कभी कभी लड़कियां जो हैं इस चीज़ को नहीं झेल पाती हैं, और हमने देखा है कि वो कभी कभी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं। और दूसरा नुकसान ये है कि एकदम इस कच्ची उम्र में जब वो शारीरिक संबंध बनते हैं एक लड़की और उसके पति में, तो वो भी उसको इम्पैक्ट करता है क्योंकि जब एक दूसरे को वो समझने का उतना समय नहीं मिला होता है और इस उम्र में शादी हो जाती है तो उनका जो है शारीरिक संबंधों की तरफ जो मानसिकता है, जो उनके विचार हैं, वो भी उस तरह से नहीं व्यक्त हो पाते हैं। कहीं ना कहीं उन विचारों का आदान प्रदान ढंग से नहीं होता है तो ये उनके शारीरिक संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और आपसी रिश्ते में भी इसका प्रभाव बहुत पड़ता है।
अच्छा खुराना जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या कम उम्र में लड़की की शादी करने से कहीं HIV का खतरा तो नहीं?
बिल्कुल ये सच है क्योंकि कम उम्र की जो लड़की है जाहिर है वो अपने पति से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनसे वो हर विषय पर नहीं बात कर पाती है, वो अपने आप को असहाय समझती है यौनिक संबंधों के सिलसिले में कुछ भी बात करने में, उसे अपनी सुरक्षा का भी नहीं पता होता है और कहीं ना कहीं वो ये भी नहीं समझ पाती है कि उसे कॉन्डम का प्रयोग के लिए अपने पति को कहना चाहिए, तो संभावना तो बिल्कुल बढ़ी जाती है।
कहता है बाबुल ओ मेरी बिटिया, तू तो है मेरे जिगर की चिट्ठी।
तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दिशा और हम बात कर रहे थे डॉक्टर कमल खुराना से, और अब समय हो चुका है आपकी बात का। अच्छा प्रेमा, इस वक्त जो चिट्ठी मेरे हाथ में है, जानते हो इसे किसने भेजा है?
किसने भेजा है?
इसे भेजा है बबीता दोभाल ने गढ़वाल से, और उन्होंने लिखा है कि HIV और एड्स में कितना फर्क होता है, और वैसे तो इससे बचने के उपाय होते हैं लेकिन इसे काफी हद तक मिटाया जा सके, क्या ऐसे कोई उपाय नहीं है? तो बबीता जी, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि HIV एक वायरस है और एड्स एक सिंड्रोम। HIV वायरस जब किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उसे एड्स की अवस्था तक पहुंचा देता है, और आपने जो उपाय के लिए कहा है तो इसके लिए तो सावधानी, सुरक्षा और जानकारी होना ही सबसे सही उपाय है।
जी हाँ, क्योंकि खास तौर पे HIV संक्रमण के 4 कारण होते हैं और उनकी जानकारी और बचाव ही सबसे सही उपाय है। और जहाँ तक बात HIV एड्स को मिटाने की है तो अभी इस पर खोज की जा रही है, पर अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे इसको पूरी तरह मिटाया जा सके।
दोस्तों, अगर आपके मन में भी HIV के संबंध में कोई शंका या सवाल है तो आप हमें अपना सवाल खत या फिर ईमेल के जरिए बिना झिझक भेज सकते हैं।
चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYEE DISHA@gmail.com।
आप अपना सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए हमारा नंबर नोट करें, 9717678223। और दोस्तों, अब आ चुका है वो समय जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है।
जी हाँ दोस्तों, आज के रेडियो धारावाहिक का।
तो दोस्तों, बिना देर किए आपको सुनवाते हैं धारावाहिक जीवन की राह की 32वीं कड़ी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, राजन और शीला डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताती है कि शीला और राजन HIV पॉजिटिव होते हुए भी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं।
उधर जयपाल अपने HIV पॉजिटिव होने की बात परिवार वालों को बताता है, जिसे जयपाल के पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाते और इस सदमे में उनकी मौत हो जाती है। आइए अब सुनते हैं कि आगे क्या होता है।
हे भगवान, ये किस मुसीबत में डाल दिया।
लक्ष्मी,
सब मेरी गलती है जी।
क्या हुआ?
ये सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ।
तुम रो क्यों रही हो?
अरे ना मैं तुम्हें शहर जाने देती और ना तुम यूँ दूसरी औरतों के।
लक्ष्मी, ये तुम
और ना फिर ये सब कुछ होता। शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो तुम इस तरह।
नहीं लक्ष्मी, नहीं। देखो, तुम खुद को दोष मत दो। असली गुनहगार तो मैं हूँ, तुम्हारा भी और इस जिंदगी का भी। काश भगवान पिताजी की जगह मुझे अपने पास बुला लेता।
नहीं जी, ये क्या कह रहे हो
लक्ष्मी?
खबरदार जो फिर कभी ऐसी बात कही। अरे तुम ही तो मेरे जीने का सहारा हो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी।
नहीं।
और अगर HIV की जानकारी होती तो तुम और सावधान रहते।
मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो।
आप यूं दिल छोटा ना करो जी। अरे इतने साल इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली हैं हमने, और अब तो ये दवाएं भी हैं जिनसे हम इस बीमारी को नियंत्रण में रख सकते हैं। बस आप यूं दिल छोटा ना करो।
लक्ष्मी, मैं क्या करूं? मैं...
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट आई।
हाँ जी, आ गए आप?
हाँ हाँ आ गया। और देख, मैं अपने साथ किसे लाया हूँ?
विनोद, मेरा बेटा। कैसा है तू? देख कितना दुबला हो गया है। खैर, अब तू यहाँ आ गया है ना, चिंता मत कर, तेरी अम्मा तेरा अच्छे से ख्याल रखेगी और अब तुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने देगी, कभी नहीं।
अरे सरिता, विनोद बेटा अभी अभी घर आया है, अभी से आराम करने दो।
हाँ हाँ बेटा, मैंने तेरा कमरा बिल्कुल वैसे ही लगा दिया है जैसा तू छोड़ कर गया था।
जाओ बेटा, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो।
अब तेरा भाग्य यही है तो यही सही।
अरे माँ जी, माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? और ये बर्तन किसके लिए निकाल रही हैं?
जयपाल के लिए।
क्या, उनके लिए? लेकिन क्यों माँ जी?
क्योंकि लक्ष्मी, अब वो हमारे जैसा नहीं रहा।
नहीं माँ जी,
बीमार है वो, और बीमारी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, इंसान को खा जाने वाली बीमारी है।
ऐसा मत कहिए माँ जी।
देखा नहीं कैसे तेरे बाबू जी को खा गया?
नहीं माँ जी नहीं, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी। अरे बाबूजी तो पहले से ही काफी बीमार थे।
हाँ थे, लेकिन ऐसे बीमार नहीं थे कि भगवान उन्हें अपने पास ही ऊपर बुला लेता। अरे मौत नहीं है, तेरा पति उन्हें निकल गया।
नहीं माँ जी नहीं, ऐसा मत कहिए। अरे वो अगर मेरे पति हैं तो आपके भी तो बेटे हैं ना माँ जी।
मेरा बेटा इंसान था, कोई शैतान नहीं जो दूसरों को यूं मौत बांटता फिरता है।
माँ जी
सुन, कल से उसे इन्हीं बर्तनों में खाना देना, और हाँ, ये बर्तन दोबारा इस रसोई के भीतर नहीं आने चाहिए, समझी?
माँ जी, माँ जी आपको क्या हो गया है? उनके साथ आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ जी?
लक्ष्मी, मैं वही कर रही हूँ जो इस घर के लिए जरूरी है। अब जा, ये बर्तन यहाँ से उठाकर अलग ले जा, मुझे अभी और भी जरूरी काम करने हैं।
ऐसा मत कीजिए माँ जी।
क्या बात है भाई, क्या बात है। विनोद की माँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो?
हटो जी, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है।
हुँ?
ये तो मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ।
अच्छा,
बेसन का हलवा।
बेसन का हलवा
विनोद को बहुत पसंद है ना ये। इसीलिए उसकी हर पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखूंगी अब मैं।
अब बेटा आ गया है तो पति को कौन पूछेगा?
अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुनिए।
हाँ?
मेरे मन में ख्याल आ रहा है।
बोलो।
जब से विनोद आया है कितना गुमसुम और उदास सा रहता है।
मैं भी वही देख रहा हूँ।
मुझे लगता है कि अगर हम विनोद की शादी कर दें तो।
शादी?
कैसा रहेगा, उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा और उसकी एक नई जिंदगी फिर से शुरू हो जाएगी।
शायद तुम सही कह रही हो।
तो फिर कोई अच्छी लड़की देखकर बात चलाइए ना।
ठीक है, जैसे ही कोई अच्छी लड़की नजर में आती है हम विनोद की शादी कर देंगे। चलो अब इसी बात पर हमारा भी मुंह मीठा करा दो।
हटो जी।
और याद है, याद है जब तूने मोहित के बारे में मुझे मना किया था तो मैं कैसे तुझसे नाराज हो गई थी।
हाँ, और पूरे 2 दिन तक तूने मुझसे बात नहीं की थी। पता है सुमन, मुझे उस वक्त तुझ पर बहुत गुस्सा आया था।
हाँ हाँ, लेकिन बाद में मैंने तुझसे माफी भी तो मांग ली थी ना।
हाँ हाँ, रहने दे।
रबिता, काश हम हमेशा साथ रह पाएं। जब हम दोनों की शादी हो जाए ना, तब भी।
शादी?
क्यों, क्या हुआ?
अरे यार पूछ मत, पिछले कुछ महीनों से पता नहीं दादी को क्या हुआ है, हर वक्त शादी को लेकर मेरे पीछे पड़ी रहती हैं।
हाँ तो इसमें बुराई क्या है?
अब तू भी मेरी दादी मत बन। हाँ।
अरे मैं तो मजाक कर रही थी।
ए सुमन, तू ही कुछ बता ना, मैं क्या करूँ, मैं भी शादी नहीं करना चाहती।
एक काम कर, दादी को साफ साफ बोल दे कि तू शादी नहीं करना चाहती।
वो नहीं मानने वाली, कुछ और बता ना।
तो फिर शादी के दिन मंडप से भाग जा।
ये कैसे हो सकता है, मैं कोई फिल्म की हीरोइन हूँ क्या?
तो एक काम करते हैं, हम दोनों ना एक दूसरे से ही शादी कर लेते हैं।
पगली है तू।
जब जब चूड़ी खनकेरे, जब जब साबन बरसे रे,
जगत जीवन की राह में सुना तुमने कैसे एक माँ अपने ही बेटे से सिर्फ और सिर्फ उसके HIV पॉजिटिव होने की वजह से भेदभाव करने लगती है।
हाँ सही कहा तुमने प्रेमा, यूं तो हम समाज को दोष देते हैं कि समाज में लोग HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन देखा जाए तो कई बार जानकारी के अभाव में इसकी शुरुआत हमारे अपने घरों में ही होती है।
वो कैसे?
अरे भाई जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक समाज से क्या उम्मीद करेंगे, आखिर हम ही को मिलाकर तो समाज बनता है।
बिल्कुल, तो दोस्तों आज यही सवाल हमारा आपसे है, अगर आपके घर में रहने वाले HIV पॉजिटिव व्यक्ति से घर के ही सदस्य भेदभाव करते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे?
घर के लोगों को समझाना चाहिए कि HIV में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, साथ खाना खाने और साथ कपड़े पहनने से HIV नहीं फैलता है।
मैं तो उनको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपके इस व्यवहार से उनका मनोबल घटता है, अगर आप भी उनके साथ यह व्यवहार करेंगे तो समाज भी उनके साथ इसी तरह का व्यवहार करेगा, जिससे कि उस मनुष्य के मन में जीने की भावना अंत हो जाएगा।
मैं तो यही कहूंगी अगर कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति से घर के लोग ही भेदभाव करने लगे तो ये बिल्कुल गलत है, घर के लोगों को ही तो उसे आत्मविश्वास लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वह समाज में सामान्य लोगों के साथ जिंदगी जी सके।
यदि मेरे परिवार वाले HIV पॉजिटिव वाले व्यक्ति से भेदभाव करते हैं तो मैं एक शिक्षक होने के नाते उस आदमी से कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा, क्योंकि यह बीमारी उस पे उत्पन्न हुई है तो हम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसका तिरस्कार करेंगे पहले तो वह आदमी अपनी बीमारी से प्रताड़ित है, अगर हम उसका मान सम्मान नहीं करेंगे तो उसके समाज में उसका मान सम्मान स्वयं ही घट जाएगा।
तो दोस्तों ये थे हमारे श्रोताओं के जवाब जिन्हें जानने की कोशिश की हमारे सामूहिक संवाददाताओं ने।
और दोस्तों अब समय हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जानकारी और मनोरंजन से भरा ये कार्यक्रम नई दिशा आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
और दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत,
अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर, तब तक के लिए
नमस्कार।